नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। एक्सियोम 4 मिशन पर गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य की वापसी आज शुरू होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर। इस वर्ष अब तक 2,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी यात्रा की। यानिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता और भारत को लॉर्ड्स क्रिकेट टेस्ट के 5वें दिन इंग्लैंड पर जीत के लिए 135 रनों की जरूरत। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। एक्सियोम 4 मिशन पर गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य की वापसी आज शुरू होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वापसी यात्रा भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगी और मिशन के सदस्य कल लगभग 3 बजे धरती पर पहुंच जाएंगे। शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य सदस्यों को 7 दिन के पुनर्वास में रखा जाएगा ताकि वे वापस धरती के गुरुत्वाकर्षण में समायोजित हो सकें। लखनऊ में मीडिया से बातचीत में शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा कि सुरक्षित वापसी के लिए वे लगातार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं,
जिसके लिए हम लोग गिनते दिन से इंतजार कर रहे थे। अब वो जो है वापसी हो रही है, हम लोगों को बहुत ही खुशी है और बहुत प्रसन्न है कि जल्दी से जल्दी वो वापस आ गए। ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं को सक्सल जो है पृथ्वी पर आसानी से उनका वापस हो और ये हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन हो।
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 14 दिन के मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में है। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष केंद्र में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित 7 प्रयोग किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर होंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दोपहर 4:30 बजे भारतीय वायुसेना के एक विशेष विमान से भुवनेश्वर पहुंचेगी। वहां से वो सीधे मुख्य अतिथि के रूप में एम्स भुवनेश्वर के 5वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने जाएगी। वो 31 छात्रों को 59 स्वर्ण पदक प्रदान करेगी और एम्स भुवनेश्वर के 643 स्वास्थ्य पेशेवरों को डिग्री प्रदान करेगी। उड़ीसा के राज्यपाल हरिबाबू कम्भमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कई अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों के दीक्षांत समारोह में शामिल होने की संभावना है। एम्स भुवनेश्वर के छात्र संकाय सदस्य और स्वास्थ्य सेवा पेशेवर उड़ीसा की धरती की इस गौरवशाली बेटी का अपने परिसर में स्वागत करने के लिए उत्साहित है। मंगलवार को अपने गृह राज्य उड़ीसा के 2 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति मुर्मू रेवेन्सा विश्वविद्यालय के 13वीं वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। वो 15वीं शताब्दी में जन्मे महान उड़ीसा कवि और विद्वान आदिकवि सारला दास की जयंती समारोह में भी शामिल होगी और 2024 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान करेगी। राष्ट्रपति की यात्रा के लिए भुवनेश्वर और कटक दोनों जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से चीन की 2 दिन की यात्रा पर हैं। वे कल तियानजिन शहर में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में संगठन के सदस्य देशों के बीच सहयोग तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। इस समूह में भारत, चीन, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस सहित 10 देश शामिल हैं। चीन शंघाई सहयोग संगठन का वर्तमान अध्यक्ष है। इस बैठक से अलग डॉ. जयशंकर द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भी उनकी बैठक हो सकती है। आशा है कि दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने और लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने पर आगे चर्चा करेंगे। वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य गतिरोध के बाद दोनों देशों के संबंधों में आए तनाव के बाद विदेश मंत्री की यह पहली चीन की यात्रा होगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
भारतीय सेना ने म्यांमा में प्रतिबंधित उग्रवादी गुट यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट अल्फा आई के 19 सदस्यों के मारे जाने की किसी कार्रवाई में शामिल होने से स्पष्ट रूप से इनकार किया है। रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी कर्नल एमएस रावत ने गुवाहाटी में कहा कि भारतीय सेना को इसकी कोई जानकारी नहीं है। परेश बरुआ के नेतृत्व वाले प्रतिबंधित गुट ने दावा किया है कि कल तड़के भारतीय सेना ने म्यांमा में उसके पूर्वी मुख्यालय को ड्रोन हमले का निशाना बनाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेशों में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग बढ़ गई है।
जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद दुनिया के लगभग 14-15 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की मांग की है। तो ब्रह्मोस मिसाइल अब लखनऊ से भी एक्सपोर्ट की जाएगी। यह फैसिलिटी रक्षा क्षेत्र में जो हमारी आत्मनिर्भरता है उसको मजबूती देगी और साथ ही इससे रोजगार का भी सृजन होगा। और मेरा प्रयास यही है कि यहां और इंडस्ट्रीज भी आएं ताकि लखनऊ के साथ साथ प्रदेश का भी तेजी से विकास हो।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा की 3 दिन की सऊदी अरब यात्रा संपन्न हो गई है। इस दौरान उर्वरक आपूर्ति तथा स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के बारे में कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सऊदी अरब के उद्योग और खनिज संसाधन मंत्री बांदर बिन इब्राहिम अल खुरैफ से बातचीत में दोनों देशों की तेल कंपनियों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री नड्डा ने सऊदी अरब के युवराज अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद के साथ भी बैठक की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल मार्ग से शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से जारी है। इस महीने की 3 तारीख को शुरू हुई श्री अमरनाथ जी यात्रा रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन 9 अगस्त को संपन्न होगी। एक रिपोर्ट।
38 दिवसीय श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले 11 दिनों के दौरान कल शाम तक पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन करने वाले यात्रियों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है। देश भर से यात्री पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन के लिए कश्मीर आने पर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। वे पवित्र गुफा की ओर जाने वाले बालतल और पहलगाम रास्तों से जुड़े क्षेत्रों में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के अलावा सभी प्रकार की व्यवस्थाओं और सुविधाओं से संतुष्ट हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 लाख का आंकड़ा पार करना उन सभी भक्तों के लिए एक उपलब्धि बताया है जो दिव्यता की खोज और अनुभव के लिए इस यात्रा के लिए घरों से निकल रहे हैं। तारिक रात्र आकाशवाणी समाचार श्रीनगर।
आज श्रावण महीने का पहला सोमवार है। देश भर के शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए उमड़ रहे हैं। श्रद्धालु उल्लास के साथ भगवान शिव के जयकारे लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। इस दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमा के नागरिकों की बड़ी संख्या में पहचान की गई है। राज्य में अब तक 80% से अधिक मतदाता अपने फॉर्म जमा कर चुके हैं। रेलवे ने रेलगाड़ियों की सभी बोगियों में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने रेल इंजनों और बोगियों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के कार्य की समीक्षा की है। केंद्र ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नकली और खराब गुणवत्ता वाले उर्वरकों के मुद्दे पर तत्काल और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में 5 बैठक होंगी और सत्र 18 जुलाई को समाप्त होगा। मानसून सत्र में राज्य सरकार कुछ संशोधन विधेयक पेश करेगी। देश में प्रत्यक्ष कर संग्रह में पिछले 10 वर्ष में 274% की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2024-25 के बीच कर विभाग से जारी रिफंड में 474% की बढ़ोतरी हुई। करदाताओं की संख्या भी 133% बढ़ी है। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल भुगतान प्रणाली बन गया है। यूपीआई के जरिए प्रतिदिन 65 करोड़ लेन देन किए जा रहे हैं। इसे अभूतपूर्व बताते हुए श्री कांत ने कहा कि ये मोदी सरकार की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि ये दुर्घटना उस समय हुई जब आमों से भरी एक लॉरी राजमपेट से रेलवे कोडूर बाजार जाते हुए पुल्लमपेटा मंडल में रेड्डीपल्ली तालाब के किनारे पलट गई। आंध्र प्रदेश के परिवहन मंत्री एम रामप्रसाद रेड्डी ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
टेनिस खिलाड़ी योनिक सिनर ने कल रात लंदन में अपना पहला विंबलडन खिताब जीता। रोमांचक फाइनल में उन्होंने मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज को 4-6 से पहला सेट हारने के बाद 6-4, 6-4, 6-4 से हराया। विंबलडन प्रतियोगिता के 148 साल के इतिहास में सिनर ये खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये सिनर का चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब है। भारत को एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच जीतने के लिए अब 135 रन की आवश्यकता है। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान में चौथे दिन भारत ने 4 विकेट पर 58 रन बना लिए थे। आज पांचवें दिन का खेल भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 192 रन पर ऑल आउट किया और भारत को जीत के लिए 193 रन का लक्ष्य मिला। भारत के लिए वाशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट हासिल किए। बास्केटबॉल में भारत ने थाईलैंड के बैंकॉक में FIBA महिला एशिया कप डिवीजन बी के टीम इवेंट में शानदार शुरुआत करते हुए कजाकिस्तान को 85-68 से हरा दिया। बात शतरंज की करें तो भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनरु हम्पी और दिव्या देशमुख ने तीसरे दौर में जीत के साथ महिला फिडे विश्व कप के अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। और निशानेबाजी में राष्ट्रीय खेलों की चैंपियन नीरू ढणा ने इटली के लोनाटो में ISSF विश्व कप के अपने पहले फाइनल में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में चौथा स्थान हासिल किया।
और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने राजस्थान, गांगे, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इधर हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश होने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के अनेक भागों में आज से 17 जुलाई तक तेज वर्षा का अनुमान है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश का क्रम लगातार जारी है, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में कई स्थानों पर भूस्खलन के चलते एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग और 196 अन्य संपर्क सड़कें अभी भी यातायात के लिए अवरुद्ध हैं। इसके अलावा प्रदेश भर में 73 बिजली ट्रांसफार्मर और 787 पेयजल योजनाएं बाधित हैं। 20 जून के बाद इस मॉनसून सीजन में अब तक वर्षा जनित दुर्घटनाओं में 98 लोगों की मृत्यु हो गई है, 178 लोग घायल हैं, जबकि 34 लोग अभी भी लापता है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 2 जिलों कांगड़ा और सिरमौर में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 3 अन्य जिलों सोलन, शिमला और मंडी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण में इसकी भूमिका विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के पूर्व महानिदेशक जी अशोक कुमार और पर्यावरणविद डॉक्टर अरविंद कुमार परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
धन्यवाद विशाल। बिहार में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण के बीच चुनाव आयोग के दावे को आज के सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बिहार की मतदाता सूची में लाखों की संख्या में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग। वहीं लोक सत्य ने लिखा है, बिहार की तरह पूरे देश में वोटर लिस्ट जांची जाएंगी। देश की सीमा पार मोबाइल फोन के सिग्नल स्पिलेज रोकने के लिए बनेंगे 200 निगरानी स्टेशन। केंद्र सरकार की इस योजना के बारे में राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास भारतीय मोबाइल फोन अपने आप विदेशी नेटवर्क से नहीं जुड़ेंगे। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आज रवानगी को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने वापसी से पहले शुभांशु के शब्दों को दिया है, भारत आज भी दिखता है सारे जहां से अच्छा।
धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एक्सियोम 4 मिशन पर गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य की वापसी आज शुरू होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर। इस वर्ष अब तक 2,00,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी यात्रा की। यानिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हराकर अपना पहला विंबलडन खिताब जीता और भारत को लॉर्ड्स क्रिकेट टेस्ट के 5वें दिन इंग्लैंड पर जीत के लिए 135 रनों की जरूरत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।